आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, शनिवार 27 जून 2026 के मुख्य समाचारों के साथ मैं हूं स्वाति शर्मा। ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के ईंधन भंडारण पूरी तरह भरे हुए हैं और ईंधन लेकर आने वाले टैंकरों को बंदरगाह पर लाने से पहले स्टोरेज खाली होने का इंतजार करना पड़ रहा है। अपने साप्ताहिक फ्यूल अपडेट में मंत्री बोवेन ने बताया कि फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के पास 44 दिनों का पेट्रोल, 37 दिनों का डीजल और 29 दिनों का जेट फ्यूल का भंडार है। उनका कहना है कि मध्य पूर्व में जारी विवाद के सुलझने के उत्साहजनक संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि स्थिति कब तक सामान्य होगी। उन्होंने सभी एयरलाइंस से मौजूदा ईंधन कीमतों को देखते हुए किराए तय करने में निष्पक्षता बरतने की भी अपील की है। सरकार का कहना है कि वह 1 जुलाई 2026 से सुपरमार्केट्स द्वारा जरूरत से ज्यादा कीमत वसूलने पर रोक लगाएगी ताकि ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ताओं को कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई कीमतों से बचाया जा सके। अल्बनीजी सरकार के अनुसार नए नियमों के तहत कोल्स और वूलवर्थ्स जैसे बड़े रिटेलर्स के लिए अत्यधिक कीमत वसूलना गैरकानूनी होगा। इन नए कानूनों को ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन लागू करेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले रिटेलर्स पर कम से कम 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। एक नई साझेदारी के तहत दूर दराज के समुदायों में रहने वाले युवा इंडिजिनस लोगों को एक वैश्विक डिजिटल कैटलॉग के जरिए फर्स्ट नेशंस भाषाओं में ज्यादा कहानियां पढ़ने का अवसर मिल सकेगा। इंडिजिनस लिटरेसी फाउंडेशन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ओवरड्राइव के साथ साझेदारी की है ताकि दूरस्थ समुदायों में रहने वाले लोगों को एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लेखकों और चित्रकारों द्वारा फर्स्ट नेशंस भाषाओं में तैयार की गई कहानियों तक बेहतर पहुंच मिल सके। वेनेजुएला में राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। वहीं दोहरे भूकंप में मरने वालों की संख्या अब 1,000 के करीब पहुंच गई है। रिक्टर पैमाने पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों ने कराकास और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में विदेशी सहायता और राहत सामग्री लगभग 2 दिन बाद पहुंची है। सरकार का अनुमान है कि अब भी कम से कम 172 लोग मलबे में फंसे हुए हैं, हालांकि एक अपुष्ट यानी अनवेरिफाइड वेबसाइट का दावा है कि यह संख्या 50,000 से अधिक हो सकती है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने ईरान के ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद अमेरिका पर युद्ध विराम के प्रति प्रतिबद्धता न होने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे एक कमर्शियल शिप पर हुए हमले के जवाब में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कार्गो शिप और तटीय रेडार ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। और वहीं बात करें भारत की, तो कांग्रेस जनता पार्टी यानी CJP ने शनिवार 27 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना धरना 8वें दिन भी जारी रखा। पार्टी कथित परीक्षा अनियमितताओं और नीट पेपर लीक विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। शुक्रवार 25 जून को SBS न्यूज से बात करते हुए CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
17-18 बच्चों ने सुसाइड करी है एजुकेशन मिनिस्टर की वजह से। अगर एजुकेशन मिनिस्टर की गलतियों की वजह से, उनके फेलियर की वजह से पेपर लीक नहीं होते तो इन बच्चे की जाने नहीं जाती। तो इन बच्चों का जो खून है वो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के हाथों पर है, तो उन्हें कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे।
आज के लिए मुख्य समाचारों में बस इतना ही। अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ, हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi या फिर SBS हिंदी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के जरिए। धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।